मेरे सभी बहुत खूबसूरत नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 18 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है आर्यन राज, जो गया बिहार से हैं। तो आर्यन, एक एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक नया संबोधन आप लोगों को दिया है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि मेरे सभी खूबसूरत नौजवान साथियों, इसमें ये जो खूबसूरत शब्द है इसको लेकर के आपको ज्यादा विचार करने की बात नहीं है कि मैं तो खूबसूरत नहीं हूं तो भी सर मुझे खूबसूरत कह रहे हैं, या ये भी लग सकता है कि सर सिर्फ आज उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो वाकई खूबसूरत हैं। इस तरह की कोई भी बात आपके दिमाग में आ सकती है। मित्रों, मेरे लिए जो सबसे खूबसूरती होती, जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है वो मन की होती है, दिल और दिमाग की खूबसूरती होती है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इस डेली ऑडियो लेक्चर को पसंद कर रहे हैं और सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पसंद कर ही रहे होंगे, तो आप अपने दिल और दिमाग को एक सुकून देना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसका परिमार्जन करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं, जो कि आप चाहते ही हैं, तो आप खूबसूरत हैं। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना, खूबसूरती की परिभाषा तो वो जो आंखों ने दे रखी है उसकी बात छोड़िए, लेकिन जो ऊर्जा से भरा हुआ है वो खूबसूरत ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जिसमें भी ऊर्जा अपने आप में खूबसूरत होती है, और आप सब ऊर्जा से भरे हुए नौजवान हैं। अगर नौजवान हैं तो आप में ऊर्जा है, और जब तक आप में ऊर्जा रहेगी तब तक आप नौजवान रहेंगे, और जब तक नौजवान रहेंगे तब तक आप खूबसूरत रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैंने जानबूझकर मेरे खूबसूरत नौजवान साथियों शब्द का प्रयोग किया है। तो आइए अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस में, और एक अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास एनालिसिस करने के लिए कोई न्यूज नहीं है, तो क्या किया जाए। आपने रेडियो समाचार सुने होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी दादरा नगर हवेली गए और इसके बाद गुजरात की यात्रा पर थे, तो उससे संबंधित खबरें थी। तो वो जो स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल जो केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दादरा नगर हवेली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो गुजरात स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए गुजरात की खबरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, वो सूरत में थे, और सूरत जो है हमारे देश का जो डायमंड है, हीरों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, हीरे डायमंड का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र सूरत है, एक बहुत एक्सपोर्ट होता है वहां से। और उन्होंने वो सूरत में कहा कि मैं इसराइल जा रहा हूं और आप सबके इसराइल से संबंध है। इसराइल से संबंध का मतलब है कि एक्सपोर्ट इसराइल के माध्यम से काफी एक्सपोर्ट डायमंड का होता है। तो एक फैक्ट आपको पता लग गया, देखिए कि सूरत एक फैक्ट तो ये पता लग गया कि भारत में जो सूरत है वो डायमंड का सबसे बड़ा केंद्र है। डायमंड उत्पादन नहीं होता है, उसकी कटाई छटाई रंगाई बनाई होती है ना। डायमंड पैदा तो इधर पन्ना मध्य प्रदेश में जो है वहां से निकलता है। दूसरी बात, इसराइल हमारे लिए इस मायने में इस बहुत इंपॉर्टेंट देश, बहुत ज्यादा मायने रखता इसराइल। ये आपके दो तथ्य पता लग गए। और तीसरा ये भी पता लग गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसराइल जाने वाले हैं। हाँ, जब प्रधानमंत्री जी इसराइल जाएंगे तब हम आगे देखेंगे कि वहां क्या बातचीत होती है। इसराइल वैसे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तथ्य आपको और पता लग गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख सुनेंगे तो सोचिए क्या तथ्य था, थोड़ी देर के लिए सोचिए। वो तथ्य ये था दोस्तों कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो इसराइल की यात्रा पर जा रहा है। ये हमारे भारत की बदलती हुई विदेश नीति का एक प्रमाण है। आपको मालूम है कि इसराइल और फिलिस्तीनी दोनों में लगातार संघर्ष चल रहा है, लगातार विवाद चल रहा है, और भारत फिलिस्तीनी के काफी साथ था वहां जो यासिर अराफात हुआ करते थे। मिसेस गांधी को तो यासिर अराफात बिल्कुल दीदी कहा करते थे, बहन माना करते थे, बड़े अच्छे हमारे संबंध रहे हैं। बट नेचुरल है कि अगर हम फिलिस्तीनी की तरफ झुकेंगे, वो अपने देश के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कुछ लोगों ने उन्हें मान्यता भी दे दी है कि फिलिस्तीनी अलग राष्ट्र है, कुछ लोगों ने मान्यता नहीं दी है। अमेरिका अभी तक एक तरह से अलग अलग राष्ट्र मान करके चलता था, ट्रंप जब से आए हैं तो उन्होंने उसको थोड़ा सा अब इस आप कह लीजिए कि इसराइल का हिस्सा मानना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के विवाद चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री इसराइल की यात्रा पर जा रहे हैं तो अब शायद हमारी नीतियां क्या होंगी, अब देखते हैं, लेकिन यह संकेत हमें उस न्यूज आइटम में मिल गया है। तो दोस्तों देखिए, खबर छोटी सी थी, कुछ खास उसमें नहीं था, लेकिन उसमें आप अपने लिए ढेर सारी चीजें पा सकते हैं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि एक ऐसा स्टूडेंट जो 22, 23, 24 साल की एज में है और सिविल सर्विस की अभी तैयारी करनी ही उसने शुरू की है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट नहीं रहा है तो फिर इन चीजों को पकड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप लोगों की ये पकड़ में नहीं आया हो तो निराश हताश मत होइएगा और ये निष्कर्ष मत लगा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कि तब तो हम सिविल सर्विस की तैयारी करने लायक ही नहीं है या हम न्यूज सुनते हैं तो हम तैयारी कर ही नहीं सकते क्योंकि हम इन चीजों को पकड़ नहीं सकते। देखिए, जो किताबें हैं, जो अखबार हैं या इस तरह के जो डेली ऑडियो हैं और भी जो कुछ भी आप सुन समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो इसीलिए तो हैं, आपकी मदद करने के लिए है। तो इसलिए निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक और छोटी सी खबर थी जो सूचना के रूप में थी कि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं, क्योंकि नेपाल की राष्ट्रपति की भारत यात्रा भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेपाल के लिए तो चलिए है ही, लेकिन अभी नई सिचुएशन में जैसा कि चीन इस क्षेत्र में लगातार अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, नेपाल के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा भारत के लिए बहुत मायने रखती है। तो बस एक सतर्कता के तौर पर मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं। मित्रों, अब मैं आज आपसे कुछ अलग तथ्यों पर बात करने जा रहा हूं। ये तथ्य न्यूज से ही जुड़े हुए हैं और आज के मेरे न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स से संबंधित है। हालांकि ये जो खबरें हैं जो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है, लगभग एक सप्ताह से तो ये चर्चा में है, लेकिन इन पर मैं बात नहीं कर पा रहा था, जानबूझकर मैंने इनको छोड़ा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इन पर बात करूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ध्यान आकर्षित करने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, सिविल सर्विस में दो तरह की चीजें होती हैं। नंबर एक, जो टॉपिक के रूप में अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है, टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी नेपाल की राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आई हैं, तो हम नेपाल के बारे में बात करेंगे तो टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि डेली एक कोई ना कोई टॉपिक लेकर बात करते हैं। दूसरा, इसका जो पार्ट होता है, इसका जो भाग होता है, वो होता है कंटेंट। टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो घटना हमें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मालूम होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सके। टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, लेकिन घटना कम इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसको हम अलग अलग एंगल से विस्तार के साथ देखते हैं, जो घटना होती है उसको हम बहुत विस्तार के साथ नहीं देखते, उसकी जरूरत नहीं होती है, उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और एग्जामिनेशन में अगर उसी घटना को आधार बनाकर कोई प्रश्न पूछा गया है तो उस घटना का उल्लेख करते हुए हम उसके उत्तर लिखाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको कुछ कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से कंटेंट इस बीच में ऐसे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको हम टॉपिक के रूप में लेकर बात करने की स्थिति फिलहाल नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो आइए मैं अब पहले एक कंटेंट पर आता हूं जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए हैं श्रीनगर, श्रीनगर के चुनाव हुए हैं, संसदीय क्षेत्र के चुनाव। और आपको मालूम है कि उस श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी, जो इससे पहले काफी पहले वहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो जीते हैं। अब इसमें जो एक कंटेंट है, जीतना वो कंटेंट नहीं है, कंटेंट ये है दोस्तों कि उस संसदीय क्षेत्र में लगभग 12.5 लाख मतदाता थे और उसमें से 90,000 केवल 90,000 लोगों ने वोट डाले। आप देख रहे हैं अखबारों में इस बीच में आ भी रहा है, लगभग 7% मतदाता केवल वोट देने आए, वहां की जो स्थितियां हैं वो उसके कारण, 7% लोग, और उस 7% लोग जब आए यानी कि 90,000 वोट डले, और उस 90,000 वोट में से लगभग 48-49,000 वोट फारूक साहब को मिले और वो जीत गए। डेमोक्रेसी में बहुमत का जो महत्व है, अब यहां देखिए कि 12 लाख में 50,000 मोटे तौर पर मान लीजिए 12 लाख में 50,000, और वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नो डाउट कि कोई इलीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नथिंग, वो बिल्कुल बनेंगे, जीतेंगे, क्योंकि कोई नियम ऐसा है ही नहीं, सबसे अधिक मत पाने वाले, सीधी सी बात है, सबसे, तो उस हिसाब से बिल्कुल वो सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। अब हम इस पर थोड़ा सा इस रूप में विचार कर सकते हैं कि ये लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप है, एक कंटेंट है, कि क्या सच में इतने कम मत के आधार पर लोकतंत्र की जो आत्मा है उसकी रक्षा की जा सकती है, ये किसी के लिए भी हो, या इसके लिए कोई और मैकेनिज्म लाया जाना चाहिए, एक प्रतिशत निर्धारित होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा में आप देखिए कि लोकसभा में कोरम बनाया गया है कि भाई इतने लोग तो संसद में हो ही, अगर कोई आपको निर्णय लेना है तो 15% तो टोटल सदस्य संख्या क्या हो ही, ये तो पता लगा कि 10-20 लोग उपस्थित हैं और वही पूरे के पूरे संसद का प्रतिनिधित्व कर ले रहे हैं, तो ये एक सवाल उठता है, और बस इस कंटेंट के रूप में इसका उल्लेख करके वो सवाल मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं। दोस्तों, इससे कुछ दिनों पहले आपको अगर ध्यान हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जब मन की बात शेयर की थी देश के सामने, तो उन्होंने फूड वेस्टेज के बारे में बात की थी कि हमारे लोग अनाज की बर्बादी बंद करें, अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए, मतलब जूठा छोड़ने की बात, उन्होंने कि हम जब खाने में देखा ना कि आप जूठा छोड़ते हैं, आप शादी ब्याह में चले जाइए तो अधिकार ही समझते हैं लोग जूठा छोड़ने का, कितना फूड बर्बाद होता है, मैंने तो रेस्टोरेंट में देखा है, रेस्टोरेंट में आपने पैसा दिया है ना तो एक शान रहती है कि भैया हम छोड़ रहे हैं, हमारा जा रहा है, हम किसी का वो थोड़ी नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो तो बहुत ही व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जूठा छोड़ने की जो आदत है इसको खत्म कीजिए, और एक समय में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, उस समय तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील ही की थी, क्योंकि अनाज की उस समय बहुत कमी हो गई थी, कि हर देशवासी एक दिन का उपवास रखे, सोचिए। और मजेदार बात यह है कि ये जो फूड ग्रेन, जो ये तो चलिए जूठा छोड़ने की बात है, कितनी ज्यादा बर्बादी है आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो वेजिटेबल्स होते हैं हमारे यहाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कल्पना करेंगे कि वो 33 लाख टन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे बर्बाद हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, 33 लाख टन, सोचिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और दोस्तों जितना हमारा अनाज खराब होता है, बर्बाद होता है, चाहे वो स्टोरेज की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग में हम बहुत कमजोर हैं, ट्रांसपोर्टेशन में अनाज बर्बाद होता रहता है, 92,000 करोड़ रुपए का अनाज खराब होता है, और मजेदार बात यह है कि अगर इस अनाज को बचा लिया जाए तो पूरे बिहार को पूरे साल भर तक फ्री में खाना खिलाया जा सकता है। हमारे यहां अगर ये माने कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 60 करोड़ लोगों पर सरकार को जो खर्च करना पड़ेगा इनके भोजन पर, उसका 2/3 भाग तो हमें केवल इस बर्बाद होते हुए अगर हम अनाज को बचा लें तो उसी से हम पूरा कर सकते हैं। तो ये फूड पर जो उन्होंने बात कही थी, क्योंकि देखिए फूड को अगर हम बर्बाद होने से बचा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन ही है, अनाज का उत्पादन ही है ना, खाद्यान्न का उत्पादन ही करना हुआ, जैसे बिजली के बारे में कहा जाता है कि बिजली को बचाना एक तरह से बिजली को पैदा करना ही है। तो मित्रों, ये सेकंड कंटेंट था जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। मित्रों, जिस दिन जम्मू कश्मीर, जिस दिन श्रीनगर में चुनाव हो रहे थे, उसी समय एक वीडियो क्लिप आपको शायद आपने देखा होगा, चैनल्स पर भी आया कि आर्मी की एक जीप है, उसके सामने एक नौजवान लड़के को बांध रखा है, और उसमें यह कहा गया है, मतलब उसमें यह लिखा गया था कि पत्थरबाजों का यही हाल होगा, यानी कि एक नौजवान लड़के को बांध करके उसका इस्तेमाल एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि एक मॉडल के तौर पर किया गया, और इसकी फिर काफी आलोचना भी हो रही है, अब इसकी तो बकायदे जांच वगैरह हो रही है, ह्यूमन राइट्स का भी सवाल उठाया गया है कि एक नौजवान को आप इस तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां आप देख रहे थे कि जब चुनाव हो रहे थे उसके आगे पीछे भी बहुत से लोग हैं जो पत्थरबाजी करते रहते हैं, और हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं जो हम तैनात हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, और चूंकि चुनाव कराने थे चुनाव के दिन भी ये चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि केवल 7% वोटिंग हो पाई। तो उसमें यह था कि इससे शायद पत्थर चलाने वाले लोग थोड़े से सतर्क हो जाएं इसका उदाहरण लेते हुए और ऐसा वो न करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक व्यक्ति का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाना चाहिए, किया जा सकता है? ये एक नैतिक सवाल भी है, एक वैधानिक सवाल भी है और एक मानवीय सवाल भी है। तो ये एक कंटेंट है, इस पर भी आप लोग विचार कीजिए। और मित्रों, चौथा जो एक कंटेंट है वह है हाई कोर्ट के जो हमारे जस्टिस हैं कन्नन जी को लेकर। आपको मालूम है कि जस्टिस कन्नन को कोर्ट की अवमानना के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, इसके बाद वो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर उन्होंने अपने घर पर ही कोर्ट लगाकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 6 और न्यायाधीशों को अपने घर पर उपस्थित होने का आदेश दिया एज ए जस्टिस। और उन्होंने ये कहा कि ये सब के सब ये जो जस्टिस है ये शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत दोषी हैं। क्योंकि जस्टिस कन्नन एग्जैक्ट मुझे समुदाय नहीं मालूम है लेकिन एसटी या एससी ग्रुप से आते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि मैं इस समुदाय से हूं इसलिए सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ इस तरह के एक्शन ले रहा है, यानी कि वो मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं और इसके वो दोषी हैं। ये एक घटना है। अब इस घटना में आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ वो आदेश पारित कर रहे हैं, मतलब अपने से सीनियर जो भी, अब लीगल प्रोविजंस क्या है एग्जैक्ट मुझे भी पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो न्यायालयिक सिस्टम है, जो जुडिशियल कंडक्ट है या जो लीगल प्रोविजंस है उसके बड़ा डिसग्रेसफुल भी एक तरीके से लगता है ना, ये बहुत उचित नहीं लगता है। तो ये एक जुडिशरी से जुड़ा हुआ कंटेंट है, इसको आप देखेंगे। मित्रों, अब आखिरी बात जो कंटेंट कंपोनेंट के रूप में है वो मैं कहना चाहूंगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ लोग अभी गए हैं और उन्होंने एक याचिका दायर की है कि जो आईटीसी कंपनी है, आपको इंडियन टोबैको कंपनी, बेसिकली ब्रिटिशर्स कंपनी रही है इंडियन टोबैको कंपनी, और ये कोर्ट में इसलिए गए हैं कि इसमें सरकार की जो भागीदारी है वो 32% है, सरकार ने इसके 32% शेयर अपने पास रख रखे हैं, और ये तंबाकू दूसरी चीजें भी बनाती है लेकिन इसके पूरे के पूरे जो इसका जो प्रॉफिट है उसका 75% केवल टोबैको तंबाकू के कारोबार से आता है। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार हेल्थ के प्रति सचेत है, जो सरकार तंबाकू के उत्पादों को निरुत्साहित करना चाहती है, क्या उसे स्वयं किसी तंबाकू कंपनी में भागीदार होना चाहिए? यह सवाल उठा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसको लेकर के दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल भी है, मैं वह आर्टिकल आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। तो दोस्तों, ये कुछ कंटेंट थे जो आपके जो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके उत्तर को बहुत सटीक बना देंगे, और सच पूछे तो इसका एक एक कंपोनेंट आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, आपके विचारों को उद्वेलित करने के लिए पर्याप्त है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। तो मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। चेतन प्रकाश वर्मा धनबाद झारखंड से, नीरज सिंह, स्वर्ण जांगिर, आकाश कुमार, सोनू अग्रवाल, शशिकला चौहान मुंबई से, देवनाथ पटेल रायपुर छत्तीसगढ़ से, प्रतीक श्रीवास्तव, रवि जाडिया अहमदाबाद से, शालिनी मांझी, संदीप सिसोदिया, रितेश नायक पिथौरा छत्तीसगढ़ से, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, आकांक्षा और कैलाश चंद्र जोशी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।